अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से में कितना ज्यादा तेज है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली सी बात है। बेटी, हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कह दो। ऐसा कहकर वो बड़ी ही बुरी तरह से रोने लगे। तब आस्था ने एक और कोशिश की और कहा, लेकिन मेरी नानी का क्या होगा? मेरी नानी मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तभी मनोज जी ने कहा, बेटा, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी नानी मेरी माँ भी है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें उस गांव में तुम्हारे पास छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें हमेशा वहां से ले आऊंगा। बेटा, बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी नानी को गांव से यहाँ अपने साथ में ही रखूंगा और उनकी दिन रात सेवा करूंगा। वैसे भी वो मेरी माँ है और मैं उनकी दिन रात सेवा करूंगा। अपनी नानी को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। अभी के लिए बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। उसके बाद हम कुछ न कुछ करके तुम्हें अरमान की ज़िंदगी से निकाल लेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों तक इस शादी के रिश्ते को निभा लो, प्लीज़ बेटा, प्लीज़। ऐसा कहकर वो उसकी खुशामद करने लगे। आस्था पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। आस्था, जो कि अपने मामा के एक फ़ोन कॉल पर पूरे गांव में उछलने लगी थी, क्योंकि उसके मामा ने पहली बार उसे अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए बुलाया था। साथ ही साथ, हालांकि आस्था की नानी ने, यानी कि मनोज की माँ ने, उसे मना भी किया था, बेटी, तुम इस शादी में मत चलो। अपनी बेटी और दामाद की मौत के बाद आस्था ही उनका इकलौता सहारा थी, और उसकी दादी ने उसे कहा था कि मनोज अच्छा नहीं है, भले ही वो मेरा खून हो, मेरा बेटा हो, लेकिन तूने देखा नहीं, शहर में जाकर वो इस तरह से बस गया है कि उसने एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ की खैर खबर नहीं ली। बस हर महीने के तौर पर घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता है और अपनी सारी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाता है। लेकिन आस्था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी समय से गाँव में रह रही थी। उसने शहर की दुनिया, शहर का माहौल, वहाँ के कोई फंक्शन नहीं देखे थे। तब आस्था ने अपनी दादी को समझाया, कम से कम मनोज मामा ने हमें बुलाया तो है ना, और वैसे भी उनकी इकलौती पोती प्रियंका की शादी थी, तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। जब आस्था ने अपनी नामी को काफ़ी ज़्यादा समझाया, तब वो दोनों दादी पोती शादी में जाने के लिए तैयार हो गईं, और वो दोनों प्रियंका की हल्दी से दो दिन पहले शहर में पहुंच चुकी थीं। शहर को देखकर आस्था काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। हालांकि उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भी शहर में ही आना था, तो इसीलिए आस्था ने सोचा कि वो शादी में जाएगी, साथ ही साथ शहर के रंग रूप ढंग, शहर का माहौल देख लेगी, और किस तरह से उसे शहर में सर्वाइव करना है उस बारे में कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था शहर में आई थी। और पूरे दो दिन उसने अपनी मामी के साथ उनके बाजार का सारा काम, घर का खाना बनाया था। इतना ही नहीं, उसकी मामी ने पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी आस्था के कंधों पर ही दे दी थी। साग सब्जी लाना, घर में मेहमानों की देखरेख, खाना पीना, झाड़ू पोछा बर्तन, हालांकि नौकर भी उन्होंने घर में काम करने के लिए लगाए हुए थे, लेकिन सब कुछ आस्था अपनी निगरानी में ही करवा रही थी। और बड़े ही जोरों शोरों से प्रियंका की हल्दी का फंक्शन भी हुआ था और मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था। और फंक्शन के बाद रात के 2 बजे के वक्त जब अचानक आस्था की आंख खुली, उसने देखा कि प्रियंका किसी से रो रो कर बात कर रही थी। तब आस्था को उस पर कुछ शक भी हुआ था, लेकिन उसे अपनी दादी की कही हुई बात याद थी कि उसे किसी के भी मामले में नहीं घुसना है और न ही किसी के बारे में ज्यादा सोचना है। तो यही सोचकर आस्था चुप हो गई थी और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रियंका यूं इस तरह से शादी के वाले दिन शादी का मंडप छोड़कर भाग जाएगी, इसके बारे में तो आस्था ने दूर दूर तक कुछ नहीं सोचा था। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकला था कि उसने प्रियंका दीदी को किसी से बात करते हुए सुना था, और इसी बात की गलतफहमी में उसके मामा और मामी दोनों ने ये समझ लिया कि आस्था ने ही प्रियंका को भगाया है। अब आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था, और जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया था और उसके सर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। अरमान को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से होने वाली है। आस्था को तो उसने आज तक देखा भी नहीं था। अब जल्दी ही आस्था को दुल्हन बनाकर अरमान के ठीक बराबर में बिठा दिया गया, और अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने बराबर में बैठी हुई दुल्हन की ओर नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान उस वक्त अगर किसी चीज़ पर था तो सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप और फ़ोन की स्क्रीन पर। वो एक भी मूवमेंट, एक भी पल अपना काम बर्बाद नहीं करना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ उसे पूरे मंडप में आलोक सिंघानिया के अलावा किसी और को इस बात के बारे में दूर दूर तक एहसास नहीं था कि जिसकी शादी इस वक्त अरमान सिंघानिया से हो रही है, असल में वो लड़की है ही नहीं जिस लड़की को उन्होंने अरमान के लिए दुल्हन चुना है। दुल्हन बदल चुकी थी। वेल, जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए सातों फेरे कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ आस्था के मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। आस्था का दिल काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी ये जानने या देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी कैसी दिख रही है, दुल्हन बनकर यहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम में खोया हुआ था,
और जब वो आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा था तब आस्था के आंसुओं की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरीं। तब जाकर अरमान को थोड़ा सा अजीब लगा और उसने एक पल शादी के जोड़े में सजी हुई अपनी दुल्हन की ओर देखा, लेकिन लंबा घूंघट होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो ये केवल कुछ ही पल हले रुका और उसके बाद अरमान फिर से अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो चुका था। आलोक जी ने जल्दी ही आस्था की पूरी जन्मकुंडली अपने हाथों में मंगवा ली थी, क्योंकि वो जिस लड़की को अपनी बहू बनाने जा रहे थे उसके बारे में सारी चीजें उन्हें अच्छी तरह से जाननी थी। और जैसे ही आलोक जी की नज़र आस्था के माँ बाप पर डिटेल्स पर पड़ी, जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, तब आलोक जी के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ गए थे। तब आलोक जी मन ही मन में सोचने लगे, मैंने तो सोचा था कि आज अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी करवा लूंगा और उसके बाद इस लड़की को 2-3 दिन के बाद तलाक देकर आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आलोक जी कहीं खो गए।
जल्दी ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी के फंक्शन कंप्लीट हो चुके थे और एक जगह 4 लोग अपनी नजर झुकाए खड़े हुए थे। वो उस शादी के हाल में अरमान सिंघानिया के बाद उस शादी का सबसे हैंडसम चेहरा कोई था तो वो 4 लोग ही थे, और 4 लोगों में से एक अरमान सिंघानिया का भाई, कजिन, ब्रदर और दोस्त थे। साथ ही साथ वो 3 बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक फेमस डॉक्टर था जो कि अरमान सिंघानिया का दोस्त था और स्पेशली उसके साथ शादी अटेंड करने के लिए वो वहां आया था। लेकिन चारों का उस वक्त मूड काफी ज्यादा खराब था। सबके सब शेरवानी पहने हुए थे और एक से बढ़कर एक हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। जितनी भी शादी हाल में लड़कियां आई हुई थीं, सबकी नज़रें बार बार जाकर उन पर ही ठहर रही थीं, क्योंकि अरमान सिंघानिया को अब देखने का उनका कोई फायदा नहीं था। अरमान सिंघानिया की शादी हो चुकी थी तो इस वक्त वो चारों स्मार्ट लड़के सभी लड़कियों के क्रश बने हुए थे, लेकिन उन चारों का मुंह पूरी तरह से लटका हुआ था। उन चारों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी दादाजी उनके पास जाकर खड़े हो गए और कहा, क्या बात है, तुम चारों इस तरह से मुंह लटकाकर यहां क्यों खड़े हुए हो? शादी में आए हो या किसी के मातम में आए हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने दोस्त या भाई की शादी में नहीं बल्कि किसी की शोक सभा अटेंड करने के लिए तुम लोग यहां आए हो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आकाश मुंह पिचकाकर बोला, क्या दादाजी, भाई की शादी तो आपने करा दी, मेरा इकलौता दोस्त था, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था उसकी शादी के लिए, लेकिन आपने हमें इतनी सी भी मस्ती करने नहीं दी, इसीलिए अब हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर आकाश ने फिर मुंह बना लिया। अब तक आलोक जी समझ चुके थे कि इन चारों को मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिला है, इसी वजह से शायद ये सब मुंह लटकाकर खड़े हुए हैं। तभी दादाजी ने कहा, अच्छा अच्छा, अपना मूड सभी के सभी बिल्कुल ठीक करो और घर जाकर जो तुम लोगों को मौज मस्ती करनी है वो करते रहना, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तब सुमित ने कहा, क्या वाकई दादाजी, क्या आप हमें बिल्कुल भी पार्टी करने से नहीं रोकेंगे? पूरी रात हम लोग मजे करेंगे, अब वादा कीजिए कि आप हमें नहीं डांटेंगे। अब जैसे ही सुमित, जो कि उस शहर की अच्छी खासी कंपनी की बड़ी पोस्ट का CEO था, ने इस तरह की बात की, उसके दादा आलोक जी उसकी ओर देखकर कहने लगे, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि तुम्हारे नीचे कम से कम 600 लोग काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम सबकी, न जाने कब बड़े होंगे तुम लोग। अब अरमान की तो शादी हो गई है, अब धीरे धीरे तुम चारों की शादी भी करवा दूंगा, उसके बाद देखूंगा कि तुम लोग कैसे और किस तरह से पार्टी करोगे। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों की टांग खींची, वो चारों बुरी तरह से मुंह बनाने लगे, और तभी उनमें से ध्रुव आगे आया और कहा, दादाजी प्लीज, अभी शादी वादी की बात हमसे मत कीजिए, ये हमारे हंसने खेलने कूदने के दिन हैं और शादी के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे, और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, क्या इस उम्र में कोई शादी करता है भला? और वैसे भी दादाजी, आपने अरमान ब्रो की जो शादी करवाई है, अब वो बेचारे देखो अपनी बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। देखो जरा, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार तो उन्हें अपनी फोन और लैपटॉप से है, आपको देख नहीं रहा है क्या? आपको पूरी शादी में सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा कहकर ध्रुव दादाजी को अरमान की ओर दिखाने की कोशिश करने लगा। तब उसके दादा ने कहा, अपने फालतू की बकवास बंद करो,